Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और उस विस्मृति के होने पर क्या हुआ? कहा विपरीत बुद्धि बन गई, और विपरीत बुद्धि बनी तो विपरीत में जब बुद्धि गई तो विपरीत की कामना होने लगी और उसी में सारा व्यवहार होने लगा। ये संकेत किया तो अब जो सत्ता है उसमें विपरीत बुद्धि नहीं होती, अस्तित्व में विपरीत बुद्धि नहीं होती, चैतन्यत्व में विपरीत बुद्धि नहीं होती। विपरीत बुद्धि किसमें हुई? का आनंदत्व में, आनंद से दृष्टि का हटना, आनंद की विस्मृति मात। और आनंद की जैसे ही विस्मृति हुई तो मैं हूं ये तो हो जीव में भी है, और मैं हूं जैसे ही होता है तो उसी से फिर कामना होती। तो कामना में हेतु क्या है? कहने लगे कामना का हेतु है अज्ञान से अपने को जान तो रहा है, लेकिन कैसा जान रहा है? आनंद से रहित जानने लगा। जो आनंद धर्म था उसको नहीं, अब उस आनंद को प्राप्त करने की उसकी कामना हो। और जैसे ही आनंद के प्राप्त करने की कामना हुई तो उसने फिर अपने को थाना बाना की तरह से बुनना शुरू कर दिया। फिर ये प्राप्त कर लूं तो आनंद होगा, वह प्राप्त कर लूं तो आनंद होगा, अर्थात विपरीतता में ही सिलसिला चलता है। लेकिन अब इन सब चीजों का मूल हेतु क्या बतलाया? तो कहने लगे अज्ञान, अविद्या। इसलिए जो आप पुरुष सूक्त में सुनते हो, यद भूतम यच्च भाव्यम, जो भी हुआ है, जो भी होगा और जो भी है, वो सब क्या है? ईशानो है। और कैसे? तो पादो अस्य भू विश्वा त्रिपादस्या अमृतं दिवि, ये वहां चर्चा की। कहने लगे उसके एक पाद में ये सब हो गया, सर्वांश में नहीं हुआ। कहां हुआ? एक पाद में हो गया। और पाद क्या है? तो हम लोग पाद शब्द से अपने पैर समझते हैं। अब जहां पैर है तो पैर की सत्ता कब होगी? विचार करो, पैर को पैर कब कहोगे? जब पूरा शरीर होगा तो शरीर को लेकर के ही तो पैर संभव है, और यदि शरीर न हो तो पैर होगा? तो पैर नाम की कोई चीज नहीं हो। तो अब जहां पर हमने कहा एक पाद में उसके में ये सब हो गया, तो एक अंश में हुआ, और किस अंश में हुआ, किस पाद में हुआ? तो कहने लगे जहां पर अविद्या आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अविद्या उसके एक अंश में, अर्थात अविद्या का मतलब एक अंश से दृष्टि हट गई, और जहां पर दृष्टि हो गई हट गई, कहने लगे वहीं पर ये सारा अभ्यास, सारा संसार हो गया। तो जिसके एक पाद में सारा का सारा हुआ, होने वाला आदि सब संकेत किया, तो इससे ये सिद्ध क्या हुआ? कहने लगे होगा हुआ तो भूत भविष्यत वर्तमान को लेकर के क्या हो जाता? कहा उसमें काल की कल्पना से अनित्यत्व आ गया, और अनित्यत्व रूप जो ये सब कुछ हुआ है वो ये संसार है। और ऐसे संसार का अधिष्ठान कौन है? तो कहने लगे वही परमात्मा या वो आत्मा, और उसी में ये सारा संसार है। अब ये बात क्यों कही? तो उसके एक पाद में है, इसलिए आप लोग भक्ति पक्ष में जब बोलते हो ना, देवी हेसा गुणमयी मम माया, और फिर कहा माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, तो सबकी निवृत्ति कब होगी? तो क्या संकेत किया? कहने लगे ये गुणमयी जो माया है वह किसकी है? तो क्या कहा? कहा मेरी है, ईश्वर। और कहने लगे कैसी है? कहा इसको पार करना बड़ा कठिन है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। और पार यदि करना चाहते हो तो उपाय क्या बतलाया? माम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रपद को पकड़ लेता है, तो माया मेताम, वो इस माया से पार हो जाता। तो क्या मतलब? यदि हम लोग जैसे अपने पैरों को समझते हैं और वैसे ही परमात्मा को भी हम पैरों वाला मान लें, तो पैरों वाला मानोगे तो क्या होगा? एक कल्पना कर लो, हमने पैरों वाला उसे मान लिया, इसलिए परमात्मा के सगुण निर्गुण दो रूप भी वर्णित कर दिए। यदि परमात्मा पैरों वाला है तो यहां क्या कहा जा रहा कि उसके एक पाद में यह सारा संसार, अब सारा संसार उसके एक पाद में है और संसार में ही क्या है? का दुख है, बंधन है, तो उसी में संसार में जीव भी है कर्ता भोक्ता रूप से, और जीव के भोग्य पदार्थ जिन्हें विषय शब्द से कहा जा रहा वो भी कहां है? संसार में। और जीव की भी धातु वही है और विषयों की भी धातु, जीव की धातु किस रूप में लेना? जो हम शरीर को लेकर के समझ रहे, तो शरीर में जो धातु है वही धातु जो है विषयों में है, क्योंकि उन्हीं पंच महाभूतों से शरीर है और उन्हीं पंच महाभूतों से सारे पदार्थ, विषय कह दो या सारे पदार्थ। अब जो है उसके एक पाद में ये सारे के सारे विद्यमान हैं, और वो कैसे विद्यमान हैं? तो कहा अविद्या को लेकर के, अध्यास को लेकर के, अध्यस्तता को लेकर के, और वो अधिष्ठान जो है वो कैसा है? कहने लगे वह जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान एक अंश में ही इन सबको रच देता, और जब एक अंश में रच देता तो जहां रचना हुई है वो उसका क्या कह दिया? तो उसका नाम रख दिया विराट स्वरूप। क्या कहा? विराट। विराट क्यों कहा? ये सापेक्षिक दृष्टि से कहा, जीव जिससे समझ सके। तो अब विराट स्वरूप उसका है, तो विराट में क्या आ गया? जिस जो परमात्मा के विराट स्वरूप को कहा, जैसे आपके विश्व को कहा, हमारा विश्व रूप, जीव का विश्व रूप क्या है? ये शरीर ही है, और परमात्मा का विराट रूप एक पाद। परमात्मा का विराट क्या है? अर्थात समस्त ब्रह्मांड, सारा का सारा संसार कहां है? उसके एक पाद में है, और वही उसका विराट रूप कह दिया गया। तो अब विचार करो, जब विराट रूप है और उसके विराट रूप में ही ये सारा संसार विद्यमान है, अब सारे संसार के अंतर्गत जो कुछ भी है वो परमात्मा की विराटता से पृथक है कि उसी के अंतर्गत है? विचार करो, क्या कहोगे? उसी के अंतर्गत है। अब जब उसी के अंतर्गत है, उससे भिन्न नहीं है, तो एक अब विचार करने की बात यह है कि जो ये कहा जाता है कि राग द्वेष को लेकर के, आसक्ति को लेकर के यह जीव जो है बंधन में आ जाता है, अब राग और द्वेष को लेकर के जीव बंधन में आता है तो इस राग द्वेष को छोड़ दे, आसक्ति को छोड़ दे तो कहा बंधन से मुक्त हो जाता। तो कहने लगे राग द्वेष को छोड़ दूं, आसक्ति को छोड़ दूं तो क्या होगा, तो संसार का व्यवहार कैसे होगा, जीव क्या कल्पना करता आपने। यदि इनको हम छोड़ देंगे तो संसार का व्यवहार, यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ देंगे तो संसार का व्यवहार कैसे होगा। और फिर कहने लगे इतना ही नहीं, जिन विषयों को लेकर के आप कह रहे हैं जिन विषयों का त्याग कर दिया जाए तो संसारी तो नहीं रहेगा भाई, उन विषयों को लेकर के ही तो सब है, और विषयों का त्याग कर दे तो जीवन ही नहीं रहेगा। और कहने लगे ये संसार ही नहीं, ऐसी कल्पना करते हैं लोग। लेकिन यही समझाने के लिए संकेत किया गया कि वही राग और द्वेष, आसक्ति, इनके रहने का स्थान क्या है। राग और द्वेष आसक्ति जिसे कहते हो, इनके रहने का स्थान क्या है, तो क्या कहोगे। कहने लगे अंतःकरण। तो ये कहां रहते, अंतःकरण में रहते। अंतःकरण में राग रहता है, अंतःकरण में द्वेष आदि रहते हैं, कामनाएं भी अंतःकरण में रहती हैं। तो लेकिन जब कर्म होता है, क्रिया होती है, व्यापार होता है, व्यवहार होता है, वो किससे होता। कहने लगे इसी राग द्वेष और आसक्ति की प्रेरणा से, और जिसमें राग द्वेष आदि रहता है उसकी प्रेरणा से इंद्रियों में व्यवहार होता है, और इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ में व्यवहार होता है। तो इंद्रिय और पदार्थ को लेकर के व्यवहार होता, तो करण और विषय। लेकिन आप विचार कर लो कि रहने वाला राग द्वेष है अंतःकरण में, और वही राग द्वेष आकर के विषय में पहुंच गया, तब जो है व्यवहार हुआ, लेकिन उसके रहने का स्थान। तो अंतःकरण में राग द्वेष रहता है, इसका मतलब है भाव जो रहने वाला है, भावना जो रहने वाली है वो कहां रहती है, अंतःकरण में। किसी जड़ पदार्थ में भावना नहीं रहती, भाव नहीं रहता, लेकिन भाव कहां रहता है, अंतःकरण में। और अंतःकरण का भाव ही उस करण के माध्यम से संसार के पदार्थ से संबंध रखता है, तब व्यवहार होता। अब यहां पर कहने लगे कि यदि विषयों का त्याग कर दें, तो विषयों का त्याग कैसा बतलाया, इस समझने की बात। विषयों का त्याग, दो रूप हमारे सामने हो गए, एक भाव रूप और एक पदार्थ का स्वरूप, विषय का स्वरूप। तो विषय का स्वरूप और विषय का भाव, बगैर भाव के विषय का स्वरूप होने पर भी भाव जब तक नहीं होता है तब तक प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति कब होती, विषय को भोग्य कब माना जाता, का भाव को लेकर के। और यदि भाव न हो तो विषय पड़ा हुआ है, करण भी पड़ा हुआ है, और वहां भोग भोक्ता बनता, भोग भोक्ता कब बनता, तो कहने लगे भाव को लेकर। भाव कहां रहता है, अंत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सारा का सारा संसार जो है वो कहां से है, अंतःकरण से है। सारा संसार अंतःकरण की छाया, तो संसार कहां है, अंतःकरण में। राग द्वेष भी कहां रहते, अंतःकरण में। आसक्ति भी कहां रहती, अब जब ये कहा जाता कि विषयों का त्याग कर दिया जाए, विषयों से आसक्ति हटा ली जाए, तो व्यवहार कैसे होगा? तो देखो, एक कल्पना करो, हमने प्रवृत्ति के हेतु जो हैं वही क्या होते हैं? का पैर होते हैं। चलने के हेतु कौन है? पैर हैं। हम चलते किससे? पैर से चलते। ऐसे ही संसार के पदार्थों में चलना किससे होता? राग द्वेष को लेकर के होता। राग द्वेष न हो तो संसार में चलना भी व्यवहार भी नहीं हो। तो अब राग द्वेष को हमने पैर मान लिया। क्या मान लिया? पैर मान लिया। और राग द्वेष को पैर मान लिया और हमने राग द्वेष को उस पृथ्वी से, उस पदार्थ की तरफ से उठा लिया। और कहो कि व्यवहार हो जाएगा तो कहोगे कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आप गंतव्य तक पहुंच जाओगे? कहां पहुंच सकते? कब पहुंचोगे? तो कहने लगे, पैरों का उठाने का मतलब जैसे पृथ्वी पर जहां हम चल करके पहुंचते, लेकिन उन्हीं पैरों को हमने उठा करके गाड़ी में रख दिया। क्या कर दिया? गाड़ी में रख दिया। अब पैर पृथ्वी पर नहीं है। पैर कहां नहीं है? पैर पृथ्वी पर नहीं है। और पैर कोई क्रिया भी नहीं कर रहे। पैर पृथ्वी पर नहीं है, पैर कोई क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिया भी हो रही है और गमन भी हो रहा है। लेकिन किसके माध्यम से हो रहा? कहा गाड़ी के माध्यम। तो जैसे गाड़ी में हमने पैर रख दिए, तो पैरों से कोई क्रिया न होते हुए भी हमारी गति हो रही है। हो रही ना? और हम अहंकार करे हुए बैठे हैं कि जब तक आसक्ति नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, तो फिर व्यवहार कैसे होगा? वहां व्यवहार हो रहा कि नहीं? वहां गति हो रही कि नहीं? अब विचार क्या करना है? गाड़ी में रखते हुए भी हम गाड़ी में आसक्ति नहीं, गाड़ी में फिर हमने राग द्वेष पैर रख दिए, साथ अपने को निष्कंटक छोड़ दिया, निष्भाव छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो भी यात्रा हो गई। ऐसे ही शास्त्र संकेत करता है कि तुम अपने राग द्वेष रूपी पैरों को, कर्तृत्वादि वाले अहंकार को क्या करो? कहां उठा करके रख दो? कहां रख दो? तो गाड़ी की तो एक सीमा है। तो कहने लगे, भगवान ने कहा माम प्रपद्यन्ते। क्या भगवान ने कहा? मेरे प्रपदों में रख दो। तो अब जब जो है उसकी शरण लोगे, गाड़ी की शरण ले ली, तो भी यात्रा हो गई। ऐसे ही जब उस परमात्म रूपी जिसके विराट की कल्पना की, उसके विराट शरीर उसका है, तो संसार से विषयों को छोड़ने से नहीं रहोगे, व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नहीं। किंतु राग द्वेष आदि को, आसक्ति को हम जो है परमात्मा के चरणों में छोड़। अब शरीर को परमात्मा के चरणों में कैसे छोड़ो? उसका तो विराट ही शरीर है, वहां तो विद्यमान था। लेकिन जो राग द्वेष हमारा भेद किए बैठा हुआ, उस राग द्वेष रूपी पैरों को हम उसमें रख दें। और जब उसमें रख दोगे तो क्या होगा? तो जैसे गाड़ी से यात्रा होती है, वैसे यात्रा भी होगी, संसार का व्यवहार भी होगा, लेकिन अब पैरों से चलना भी नहीं है और पैरों से कोई क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिया। और वो क्रिया पैरों से चलने से श्रम होता है और उसमें चलने में कोई श्रम हो, ये संकेत किया। तो ठीक इसी प्रकार से संकेत किया गया कि जब हम अपने राग द्वेष को हटा करके और उस राग द्वेष को कहां कर दें? उठा करके रख दो। कहां रख दो? तो कहने लगे, जैसे गाड़ी में पैरों को रख दिया, वैसे ही परमात्मा का जो प्रपद है उस प्रपद में रख दे। और वो है विराट। कैसा है? सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि हां नहीं। अब जब वो सर्वत्र है और उसमें हमने रख दिया तो फिर कहां जाओगे, कहां आओगे, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। तब तो पार करना या चलने की भी जरूरत, क्योंकि उसकी तो सर्वत्र सत्ता है। तो इस प्रकार से यहां संकेत किया कि ऐसे प्रपदों में जब हमने रख दिया तो अहंकार नहीं रह गया, राग द्वेष नहीं रह गया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा, का व्यवहार हो रहा है। व्यवहार हो रहा कैसे, इसी को लेकर के श्रुति के अंतर्गत कहा। श्रुति के अंतर्गत क्या कहा, ईसावास की है प्रारंभता में ही संकेत कर दिया। क्या कहा, ईसावास मिदम सर्वम यद किंचित, काश संसार जिसे तुम समझते हो इसमें जो कुछ भी है वो सब कैसा है, तो कहने लगे ईस से व्याप्त है, ईस उसमें बसा हुआ, ईस की वहां विद्यमानता। और कहने लगे जब उसकी विद्यमानता है तो क्या कहा, अब यही बात हमारी है समझ में आ जाए तो बात बने। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन केन किसके त्याग से, जान दो, कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये नहीं कहा कि भोग मत करो, भोग करो, व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार फिर कैसे होगा। कहने लगे तेन त्यक्तेन केन त्यक्तेन, अब वहां पर जो तेन त्यक्तेन का मतलब है वो क्या है, तो कहने लगे ये जो अहम है, फांसी पर राग द्वेष भी नहीं रहे सब आ जाएंगे उसमें, ये अहम जो आपने अपना कर रखा है और उसके द्वारा जब आप भोग करते हो तब जो है आप बंधन में जाते हो, दुखों में जाते हो। अब जब अहम का त्याग कर दिया, त्याग कैसे होगा, क्यों त्याग तो हुआ रखा है लेकिन उसे हम मान रहे नहीं। जब ये कह दिया ईसावास्य मिदम सर्वम, ये सब कुछ जो है वो क्या है, कहा उसमें ईस व्याप्त है। अब जब ईस ही सर्वत्र है तो बीच में हम अपने को कहां से ला रहे, ये मैं कहां से आ गया, तो वही सर्वत्र है और जब वही सर्वत्र है तो उसी को मान लो, तो अपने मैं को उसी में कर दो, माने ये मैं भी वही है। क्या कहना होगा, यह मैं भी, इस मैं में भी वही व्याप्त है। तो इस अहम के त्याग के द्वारा, और जब अहम का त्याग कर दोगे तब कहा भुंजी था भोग करो, फिर कैसे भोग, जब अहम नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा तो भोग कहां होगा। कहने लगे तेन तक तेन भुंजी था, और फिर क्या कह दिया, जिसका भोग करोगे वो क्या है, मांग रधा कश्य धनम, किसी के धन की इच्छा न करो, तो धन है किसका है? तो भाई जब वही समय में व्याप्त है तो धन भी तो वही है, धन भी वही है, मतलब क्या, जितने भी विषय हैं, जो भी पदार्थ हैं वो भी वही है। तो अब जो भोग्य पदार्थ है वो भी वही है, भोगता है वो भी वही है, और जब वही है ये भावना आ गई तो फिर क्या होगा, तो वहीं पर अहम नष्ट होगा, राग द्वेष नष्ट होंगे और वहां परमानंद की प्राप्ति होगी। फिर जो हम छोटा छोटा घेरे वाला सुख प्राप्त करते वो नहीं, कैसा प्राप्त होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की विद्या को ही बतलाने के लिए ये सारे अधिष्ठान अध्यस्त अध्यास आदि की कल्पना करते हुए और फिर इनका निराकरण करते हुए, निषेध करते हुए, यह जो विद्या है उपनिषद विद्या वो इस चीज को बतलाती है। इसलिए उपनिषद विद्या क्या करती है, हमारे सारे बंधनों को, हमारे सारे अज्ञानों को, जिसके द्वारा हमारे अंतर्गत है विपरीत बुद्धि आई और अधिष्ठान अध्यस्त भाव बना, तो कहने लगे फिर तो अधिष्ठान अधिष्ठान ही रह गया है, और है भी, जब विषय भी उसी से निर्मित है, उन्हीं पंचभूतों से, और शरीर भी उन्हीं पंचभूतों से निर्मित है, अंतःकरण आदि भी उन्हीं से निर्मित है, तो जब सब उसी से निर्मित है तो उससे भिन्न है क्या? वही तो सब में व्याप्त। लेकिन अब यहां पर थोड़ा विचार ये भी करना, ये जो पंच महाभूत हैं वो भी अध्यस्त हैं। पंच महाभूत हैं वो भी क्या है? अध्यस्त हैं। और आगे जब चलोगे तो पंच महाभूत भी अध्यस्त हैं। और कहने लगे ये अध्यस्त इनका कैसे हुआ? तो संकेत किया कि उस अविद्या को लेकर के अव्याकृत वह कहलाया। वही परमात्मा का नाम क्या पड़ गया? जैसे ही माया की उपाधि आई तो माया की उपाधि आने पर ही उसका नाम पड़ गया अव्याकृत। उससे पहले कोई नाम नहीं, उससे पहले तो सच्चिदानंद है। लेकिन माया की उपाधि आने पर उसका नाम अव्याकृत पड़ा। और अव्याकृत नाम जैसे ही पड़ा तो अव्याकृत नाम पड़ने से उपाधि से उपेत होने पर ही जैसे जहां भी उपाधि आ जाती है तो उपाधि को लेकर के ही दूसरे धर्म की प्रतीति। जैसे मणि रखी, गुलाब का पुष्प सामने रख दिया तो उस मणि में लालिमा की प्रतीति होने लगती, लेकिन लालिमा है नहीं उसमें, लेकिन न होते हुए भी लालिमा की प्रतीति हो जाती। ऐसे ही उपाधि के आ जाने से उपाधि जैसे ही आई माया की, और माया की उपाधि आने पर वह का नाम अव्याकृत पड़ा, और अव्याकृत पड़ा तो माया की उपाधि को लेकर के पड़ा, तो माया की उपाधि को लेकर के ही उसमें फिर अहम आ गया। क्या आ गया? अहम आ गया। अहम आ गया तो व्यक्त हो गया, तो वह हिरण्यगर्भ कहलाने लगा। मन एक अंतःकरण वाला बन गया, एक मन वाला बन गया, और जैसे ही बना तो अहम आ गया, तो हिरण्यगर्भ कहला। और जैसे ही अहम आया तो वहीं से कामना प्रारंभ हो गई। मैं हूं तो एको अहम बहु श्याम, वहीं से। और जैसे ही यह कामना प्रारंभ हुई तो उसका सिलसिला फिर आगे चलता। और जब नदी प्रवाह में बहती है तो उसके प्रवाह में क्या होता? प्रवाह में कचड़े चड़े आ जाते हैं, और आगे कचड़े चड़े आने से नदी आगे फिर गंदी होती। प्रारंभ में शुद्ध होती है लेकिन आगे फिर गदलापन, तो कहने लगे फिर अविद्या हो गई। अविद्या हो गई तो अविद्या को लेकर के फिर उसी की जीव संज्ञा पड़ गई, और जीव संज्ञा पड़ गई तो जीव में आकर के अविद्या ग्रसित है, तो इसलिए उसमें मने परिच्छिन्नता हो गई, विभाग हो गए, अनेकता हो गई, और व्यक्ति से लेकर के फिर उसी में राग द्वेष आदि सब आ गए। अब यदि क्रम से हम राग द्वेष आदि की निवृत्ति कर दें, अहम भाव की जो है निवृत्ति कर दें, तो भाव को छोड़ देना ही क्या है? मुक्त है। स्वरूप को छोड़ देने की बात नहीं कही, स्वरूप से विषय है, शरीर है, लेकिन भाव का त्याग होने से ही क्या होगा? का उनसे बंधन से मुक्त, उनके दुखों से हम मुक्त हो जाए। तो भाव का त्याग करना है, और भाव का त्याग करते हुए फिर स्वरूप का त्याग जो है क्रम से हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए प्रारब्ध शब्द कह दिया। तो ये सब ये उपनिषद विद्या है। ऐसे विद्या को यहां बतलाने के लिए प्रारंभ ये तैतरीय उपनिषद हो रही। इसमें ही अब आगे जो है भगवान कह रहे कि ये जो क्रिया है वो किससे होगी? तो विद्या के द्वारा ही होगी, अन्य किसी कर्म आदि के द्वारा ये संभव नहीं। कर्मों की गति कहां तक है वो सब पूर्व पक्ष को लेकर के उठाएंगे यहां। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान।